नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपके सभी समस्याओं का समाधान करता है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे धर्म और आध्यात्म के विषय में। किसी महापुरुष ने बहुत सुंदर बात कही है इस विषय में कि धर्म और आध्यात्म केले की तरह है। धर्म वास्तव में केले का बाहरी भाग है, अर्थात छिलका है, और आध्यात्म केले का भीतरी भाग है। तो धर्म वास्तव में बाहर जो हमें दिखाई देता है वो है, लेकिन आध्यात्म अंदर से व्यक्ति को सशक्त बनाता है, जिसकी चर्चा आदरणीय सूर्य भाई जी पिछले एपिसोड में कर रहे थे। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं उनके साथ, उनका स्वागत करते हुए। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत
शुक्रिया।
प्रताप जी, ये धर्म और आध्यात्म की चर्चा भारतवर्ष में तो आम है, लेकिन कई बार लोग इसे अलग नहीं कर पाते। और पिछली बार भी जैसे हमारे एक दर्शक ने पूछा था कि आप लोग इन दोनों शब्दों का अलग अलग इस्तेमाल करते हैं और आध्यात्म पे ज्यादा जोर देते हैं, धर्म की चर्चा कम करते हैं। और वास्तव में आपने बहुत सुंदर बात कही थी कि आध्यात्म भीतर से विकास करने वाली चीज है, आत्मा से जुड़ी हुई चीज है, हमारे मूल गुणों और मूल शक्तियों का विकास करने वाली चीज है, और इसी पे शायद ज्यादा आज के व्यक्ति को फोकस करना चाहिए।
धर्म का जो स्वरूप दिखाई देता है, जिसको हम कहेंगे ये व्यक्ति बहुत धार्मिक है, यानी बहुत नम्र है, बहुत सौम्य है, बहुत भावना वाला है, दूसरों को बहुत प्रेम, रहम, सहयोग, सहानुभूति ये सब देने वाला है। और एक दूसरा बाह्य रूप पूजा पाठ, शास्त्रों का अध्ययन आदि, वो भी इसमें आ जाता है। ऐसे व्यक्ति को हम धर्म कहते हैं। लेकिन धर्म के पीछे, जैसे आपने कहा कि केले के अंदर अगर गुद्दाई ना हो, माल ही ना हो, तो केले का महत्व ही क्या। तो वास्तविक शक्ति है अध्यात्म, वो अगर धर्म के बीच में नहीं है, धर्म के अंदर समाहित नहीं है, तो धर्म जैसे एक बाह्य स्वरूप दिखाई देता है, उसका वास्तविक आंतरिक स्वरूप लोप हो जाता है। और धर्म मनुष्य को उतना बल प्रदान नहीं करता, नहीं तो रिलीजन इज माइट। धर्म में बहुत शक्ति है, वो बहुत शक्तिशाली मनुष्य को बना सकता है। उसमें नैतिकता समाई होती है, उसमें श्रेष्ठ चरित्र, संपूर्ण पवित्रता समाहित होती है। तो हम आध्यात्म उसे कहेंगे जो अंदर रहने वाली आत्मा का विकास करता है, जो आत्मा में उसके सभी गुणों का समावेश करने में मदद करता है, जो आत्मा को बहुत सशक्त बनाता है। नहीं तो क्या होता है, देखिए एक शब्द ही धर्म के लिए प्रसिद्ध है, धर्म भीरू। धर्म की कुछ सिद्धांतों से लोग भयभीत रहते हैं, ये कर लेंगे तो कहीं भगवान हमें सजा ना दे, ये कर लें तो कहीं हमारा पाप ना हो जाए, मच्छर को मार दें तो कहीं भगवान हमें भी ना मारे, मक्खियों को मार दें तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो धर्म मनुष्य को भीरू कर देता है, डरपोक बनाता है। परंतु जब धर्म के साथ अध्यात्म जुड़ जाता है तो मनुष्य बहुत शक्तिशाली बन जाता है, इतना शक्तिशाली कि उससे अधिक शक्तिशाली और कोई होता ही नहीं।
आज के दौर में भ्राता जी, आपको नहीं लगता कि जो धर्म का स्वरूप है वो ज्यादा प्रचलित, अर्थात पूजा पाठ, कर्म कांड, इन सब में लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन अध्यात्म की ओर कम ध्यान दे पा रहे हैं?
इसका कारण ये है कि अध्यात्म का ज्ञान, उसका प्रचार कहीं हुआ ही नहीं। अब बहुत सारे गुरु पैदा होते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, नो डाउट, वो अच्छी शिक्षाएं देते हैं, लोगों को सहयोग करना सिखाते हैं, आपस में भी कहीं ना कहीं प्रेम भाव बढ़ाना सिखाते हैं, थोड़ा बहुत जो उनके पास होता है ज्ञान भी देते हैं, लेकिन वो सब धर्म ही रहता है, धर्म का बाह्य स्वरूप। अध्यात्म के लिए तो भारत में भी एक ही धर्म ग्रंथ सबसे प्रसिद्ध है, जिसके बारे में आजकल लोगों को इतना ज्ञान ही नहीं, और वो है श्रीमद् भगवत गीता। और भी शास्त्र ग्रंथ बहुत है, लेकिन उनमें भक्ति का विस्तार ही ज्यादा है, कहानियां ज्यादा हैं, लेकिन सत्य ज्ञान, स्वयं के बारे में पहचान, परमात्मा से नाता जुड़ाना, निष्काम कर्म योग करना, त्याग और संन्यास को सच्चे अर्थों में समझना, ये चर्चाएं केवल श्रीमद् भगवत गीता में है। छोटा सा ग्रंथ है, कभी 25 पैसे की मिला करती थी, तो भी लोग पढ़ते नहीं थे, देखते नहीं थे, सोचते थे इसको पढ़ेंगे तो वैराग हो जाएगा, हम घर छोड़ के जंगल में चले जाएंगे, बच्चों को तो देखने नहीं देते थे कि अगर बच्चे देखेंगे तो पढ़ेंगे नहीं फिर, ये कुछ गलत भ्रांतियां, चाहे इसके पीछे कुछ सत्य घटनाएं रही हों, पर ये भ्रांतियां फैल गई थी, तो उसका अध्ययन, उसका प्रचार हुआ ही नहीं। अगर हुआ भी तो इतना कि लोगों ने गीता का एक अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, वो भी भक्ति बना दिया, उसको भी धर्म का बाह्य स्वरूप दे दिया। लोगों ने सोचा ही नहीं कि गीता जो कह रही है उसको हमें अपने जीवन में अपनाना है। तो ये अंतर है धर्म और अध्यात्म।
बिल्कुल, केवल पाठ ही करते रहे गीता का, लेकिन उसमें जो कहा गया है उसे अपने जीवन में नहीं लाया। जैसे गीता में कहा ही गया है कि काम क्रोध और लोभ नर्क के द्वार हैं, पढ़ते तो रहे लेकिन साथ साथ काम क्रोध और लोभ से और ज्यादा युक्त होते रहे, तो जीवन में वो चीज नहीं आ पाई। और जो आप कह रहे हैं कि अध्यात्म अर्थात जीवन, धर्म केवल बाह्य रूप में हम लोगों को दिखाई देता है, लेकिन अध्यात्म अर्थात जीवन में उन चीजों को शामिल किया जाए तब कहीं जाकर के धर्म शक्ति का रूप ले पाता
है। और दूसरी बात यह है कि अध्यात्म के लिए कुछ और चीजों की जरूरत नहीं कि हमें समय देना है, हमें घंटों पूजा पाठ करनी। देखो, पूजा पाठ के लिए तो कई लोग रोज सवेरे 2 घंटे भी निकाल कर बैठते हैं, अध्ययन के लिए भी उन्हें कुछ समय देना पड़ता है। पर अध्यात्म एक ऐसी परिचर्चा है, एक ऐसी पद्धति है जो जीवन से जुड़ा है, बस उसको जीवन में अपनाना है, कुछ बातों को जानकर उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है और हम आध्यात्म से परिपूर्ण होने लगते हैं।
लेकिन यदि अपना आध्यात्मिक विकास करना है, जो वास्तव में बहुत आवश्यक है, उसके लिए क्या करें?
मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो हमारे पास आए, पर ये सत्य कहना भी जरूरी है कि हमारे सेवा केंद्रों पर जहां तहां, जो हर बड़े शहर में और आजकल तो छोटे गांव में भी खोल दिए गए हैं, वहां पर यह आध्यात्मिक ज्ञान ही दिया जाता है। इसलिए कहीं कहीं लोग हमारे वहां जाकर ये भी कहने लगते हैं कि तुम्हारे यहाँ चित्र तो सब देवी देवताओं के हैं, पर तुम कहीं फूल तो चढ़ाते ही नहीं, कहीं अगरबत्ती तो जलाई नहीं जा रही, कहीं दीपक धूप तो किया नहीं जा रहा है। तो अध्यात्म माना स्वयं के बारे में संपूर्ण जानकारी, परमात्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी वो वहां पर दे दी जाती है। और जब मनुष्य को अपने बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाती है, जब वो परमात्मा से जुड़ जाता है, तब उसे उसकी पूजा करने की जरूरत नहीं रहती, तो पूजा पाठ पीछे छूट जाता है। और ये आध्यात्म ज्ञान मनुष्य को सच्चे अर्थों में धर्म से युक्त कर देता है, यानी उसको धर्म की ये बाह्य प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं होती, पर उसका जीवन ही धर्म बन जाता है।
जी जी जी, तो एक प्रकार से धर्म का मूल ही है आध्यात्म। तो हम यदि पूजा पाठ कर भी रहे हैं तो लक्ष्य हमारा ये हो कि हम अध्यात्म की ओर बढ़ें, अपना सर्वांगीण विकास करें, जो भी हमारे आंतरिक गुण हैं, शक्ति हैं, उन सबका संपूर्ण रूप से विकास करना ही आध्यात्म का मूल लक्ष्य है। प्रथा जी, मैं अब मेल की ओर आ रहा हूँ, जो हमारे पास बहुत सारे मेल्स आए हुए हैं, और इसमें प्रथम मेल हमारे पास आया है गाजीपुर यूपी से, और रामकृष्ण गुप्त जी लिख रहे हैं कि आज हमारे देश में बहुत सारे धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय हैं, और सभी ये कहते हैं कि हमारे पास ही सत्य ज्ञान है, हम ही ईश्वर तक आपको पहुंचा सकते हैं, हम ही आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। सभी स्वयं के पास सत्य होने का दावा करते हैं, ऐसे में आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि सत्य क्या है, हम जाएं तो कहां जाएं, आखिर सत्य को परखा कैसे जाए?
हाँ, बिल्कुल ठीक है, गुप्त जी का कहना बिल्कुल यथार्थ है। जहाँ एक ही जगह 10 मार्ग जा रहे हों और सभी दावा कर रहे हों कि इस रास्ते से जाएंगे तो आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, संभव है वो 10 के 10 मार्ग घूम फिर के, मुड़ के, लंबी यात्रा तय करके, कोई कटीले मार्गों को पार करने के बाद उस टारगेट पर पहुंचता हो। तो देख लिया सबने, कहीं भी जाकर परमात्म प्राप्ति हुई या नहीं हुई, सत्य जहां है उसका सबसे बड़ा प्रूफ होगा सरलता। सत्य जहां है उसका सबसे बड़ा प्रूफ होगा, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, वो आत्मा का कल्याण करेगा, वो जीवन को बिल्कुल सुंदर बनाएगा। जहां सत्य होगा वहां मनुष्य के पास बहुत शक्ति होगी। और एक अंतिम बात मैं इस बारे में कहूंगा कि जहां सत्य है वहां खोज समाप्त है। जब मनुष्य को पता लग गया 2 + 2 = 4, ये अंतिम सत्य है, इसके बाद ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि 2 और 2 = 4 कैसे होते हैं, वो हैं, सबने उसको स्वीकार किया। तो सत्य एक ऐसा अंतिम सत्य है जिसको सभी स्वीकार कर लेते हैं और खोज समाप्त हो जाती है। तो इस तरह हमें सत्य को परख लेना चाहिए। निश्चित रूप से किसी भी दुकान पर हम जाएंगे, वो अपना हल्के से हल्के माल को भी बहुत प्रशंसा करके बताएगा, इससे अच्छा मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, यही स्टैंप देख लेना, यही सत्य की स्टैंप है। बिल्कुल, तो हर व्यक्ति अपनी बात को प्रबल ढंग से तो कहेगा ये तो बिल्कुल नेचुरल है। कोई क्यों कहेगा कि हमारे मार्ग पे न चलना, उसके मार्ग पे जाना, वहां से तुम्हें भगवान मिल जाएगा। लेकिन हमें देख लेना है, परख लेना है, जहां हमें आत्मसंतोष मिले, जहां हमें आत्मशुद्धि का मार्ग मिले, जहां हमें लगे कि हमारा चित्त पवित्र होता जा रहा है, जहां हमारे सभी प्रश्नों का हल हमें सहज भाव से मिल रहा हो, और जहां पहले ही दिन से हमें परमात्मा अनुभूति का आभास होने लगा हो, वही सत्य है। इसलिए हर व्यक्ति बुद्धिमान है, उसे सहज ही इस बात को परख लेना है और सत्य मार्ग पे चल देना है।
व्रति जी, लेकिन मान लीजिए एक व्यक्ति इन सभी मार्गों पर जाकर के परखना चाहे तो हजारों मठ मठांतर हैं जैसे इन्होंने कहा है, तो शायद पूरी उम्र ही गुजर जाए इसमें। तो सत्य एक सही रूप में यदि हमारे सामने आ जाए, सबके सामने आ जाए कि वास्तव में यही सत्य है, संपूर्ण सत्य है, तो ये जो तलाश है, खोज है, वो
बिल्कुल
समाप्त हो जाए।
हम तो ये कह ही रहे हैं, बिल्कुल खुलेआम कह रहे हैं कि अब आपको सत्य के मार्ग को खोजने की जरूरत नहीं। हम में से लाखों लोगों ने वो सत्य का मार्ग खोज लिया है, और लाखों ने ही, लाख माना एक ही लाख नहीं, बहुत सारे लाखों ने परमात्म मिलन का सच्चा सुख भी प्राप्त कर लिया है। और मैं जानता हूं कि अनेकों की सत्य की खोज भी पूर्ण हो गई है। पहले वो प्रश्न ही पूछा करते थे, मुक्ति के बाद हम कहां जाएंगे, हम पता नहीं कहां से इस संसार में आए हैं, भगवान को पता नहीं मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, भगवान कभी आता भी है क्या। लेकिन अब हमारा ये ईश्वरीय ज्ञान लेने के बाद उनके ये सभी प्रश्न, न केवल इनका हल मिल गया, लेकिन उनका चित्त ही शांत हो गया। एक तो है बौद्धिक दृष्टि से, तार्किक दृष्टि से किसी बात को समझ लेना, लेकिन कभी कभी ये होता है कि तर्क के द्वारा कन्विंस होने के बाद भी मनुष्य अंदर से असंतुष्ट रहता है। लेकिन यहां आने वाले सभी संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए, उन्हें बिल्कुल सत्य आभास हो गया बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ये बहुत बड़ी चीज है, अनुभवों के आधार से उन्हें अनुभव हो गया कि यही सत्य है। तो जो सत्य मार्ग के राही हों, जिन्हें सत्य की तलाश हो, जिन्हें प्रभु मिलन का सुख चाहिए, उनका हम स्वागत करते हैं, आ जाइए। और बस ज्यादा नहीं, एक 7 दिन का कोर्स करें और 6 मास इन चीजों को अपना कर देखें, पसंद आए आगे बढ़ाएं। सत्य का मार्ग मिल जाए तो बहुत भाग्यवान, न मिले तो मार्ग खुला है।
बिल्कुल, तो सबको खुला निमंत्रण है कि आकर के एक बार अवश्य देखें और अनुभव करने की कोशिश करें। जिस प्रकार से लाखों लोग यहाँ अनुभव कर रहे हैं सत्य को, जिन्होंने पा करके अपने जीवन में संतोष का जो अनुभव कर रहे हैं, और सचमुच परमात्मा मार्ग पर चलते हुए सबका कल्याण भी कर रहे हैं, तो सभी को एक बार अवश्य आकर के थोड़े समय के लिए अनुभव करके अवश्य देखना चाहिए। और फिर तो खुला मार्ग है ही, जैसा आपने कहा, यदि आपको लगता है कि सत्य यहाँ है तो निश्चित रूप से उसमें आगे बढ़ें, अन्यथा संसार में अन्य बहुत सारे मठ मठांतर तो है ही, तो वहां भी जा करके, वैसे किसी का विरोध तो है ही नहीं, सभी एक श्रेष्ठ कार्य कर ही रहे हैं, तो सभी स्थानों पर जाकर के भी इसका अनुभव कर सकते हैं। प्रातः जी, मैं अगले प्रश्न की ओर आ रहा हूं। ये प्रश्न आया है हमारे पास, ये अनाम प्रश्न है हमारे पास, अनाम मेल है, और शायद हमारी एक बहन लिख रही है कि मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ, कंपनी में साथी कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा नहीं है, कुछ लोग बहुत बुरी नजर से घूरते हैं और कई बार अभद्र कमेंट्स भी करते हैं, इससे मुझे बहुत परेशानी होती है। मैं अभी ऑफिस में नई हूँ, इसलिए सोचती हूँ कि यदि बॉस से कहूंगी तो वो भी क्या सोचेंगे कि अभी अभी आई है और इतने पुराने कर्मचारियों का कंप्लेन कर रही है, और यदि घर में बताऊं तो मम्मी पापा परेशान होंगे, बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली है, इसे छोड़ना भी नहीं चाहती, कृपया समाधान बताएं।
बिल्कुल, ये अनाम तो है, लेकिन इसमें बहुतों के नाम जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये समस्या नए फीमेल एम्प्लॉइज को बहुत आती है। संसार बिल्कुल तमोप्रधान बन गया है, मनुष्य की वृत्ति बहुत दूषित हो गई है, और अनेक युवक और अनेक बड़े लोग भी कई दूषित प्रवृत्तियों के शिकार हैं, हम जानते हैं। उनकी दूषित वृत्तियां दबी हुई हैं, इसलिए जब उन्हें कहीं ऐसा मौका मिलता है वो भद्दे कमेंट्स करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और दूसरों से इस तरह का व्यवहार करते हैं। इसलिए इस प्रश्नकर्ता बहन को मैं कहूंगा, आप बिल्कुल रिजाइन करने के लिए कोई जल्दीबाजी न करें, और आप ये मान लें कि आप क्रिएटर हैं, आप सुंदर चीजों की रचना करने वाले हैं, आप इस माहौल को बदल लेंगे, आप में इसको बदलने की शक्ति है। लेकिन मैं एक चीज और छोटी कहूंगा जो बिल्कुल साइकोलॉजिकल है, कि जब दूसरे लोग उल्टे कमेंट्स करते हैं तो ये बहुत सीरियस होके परेशान ना हो जाए, जस्ट इतना करे कि मुस्कुरा के खत्म कर दे बात, तो वो भी समझ लेंगे कि हमारी बातों का इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जब मनुष्य देखता है, जैसे छोटे बच्चे बूढ़ों को चिढ़ाया करते हैं ना, अब बूढ़े अगर चिढ़ते हैं तो बच्चों को बड़ा मजा आता है कि वाह काम सफल हो रहा है, फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे कि बूढ़े फिर चिढ़े। तो अगर हम अपनी मनोस्थिति को बिल्कुल एक रस रख लें तो जो ऐसे कमेंट्स करने वाले लोग हैं वो हार जाएंगे, एक बात। दूसरी, जो मैंने कहा कि हम क्रिएटर हैं, हम माहौल को बदलने वाले हैं, ऐसे कई अनुभव लोगों के मेरे पास हैं, मैंने उन्हें छोटी छोटी राय दी और ये सब कुछ उनका बदल गया। तो मैं इस बहन को कहूंगा कि वो दो संकल्पों की प्रैक्टिस करे। एक, मैं भगवान की संतान हूं, मैं महान आत्मा हूं। यह अभिमान नहीं है, इसको स्वमान कहते हैं। इससे क्या होगा, हमारी महानताएं इमर्ज होंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी जो सोई हुई हैं, और हमारी महानताएं दूसरों पर महान प्रभाव डालने लगेंगी। वो जो दूसरे लोग हैं जो देख रहे हैं ये कल आई है, ये 15 दिन से आई है, तो वो उस दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अगर वो ये देखने लगेंगे ये कल आई है बट शी इज वेरी ग्रेट, तो वो झुकने लगेंगे इनके सामने। और ये काम होगा, हाँ वहां ये बैठकर कई बार ये प्रैक्टिस करे, इस संकल्प को क्रिएट करे, मैं महान आत्मा हूं, भगवान की संतान हूं, और इसका चमत्कार देखें। दूसरी चीज, एक बहुत अच्छा अभ्यास ये कर लें, मैं पवित्र आत्मा हूं, तो इससे पवित्र वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे और उन लोगों की जो दूषित वृत्तियां हैं उसको वो समाप्त करेंगे। ऐसे भी बहुतों के अनुभव मेरे पास हैं ऑफिसों में, ये तो जेंट्स एंड लेडीज की बात है, जहां ऐसे थे कि जेंट्स जेंट्स सब इंजीनियर, और एक बहुत जेंटिल इंजीनियर उसको सब सता रहे हैं, उस पर कमेंट्स कर रहे हैं, उसको बुरा बोल रहे हैं, वो परेशान हो रहा है, चिढ़ रहा है, वो सिगरेट पी रहे हैं, उसके ऊपर धुआं डाल रहे हैं, और अनेक कमेंट्स और हंसी मजाक हो रही है।
जैसे कॉलेज में नए स्टूडेंट्स आते हैं तो उनकी रैगिंग ली जाती है, वैसे नए कर्मचारी आते हैं तो उनकी भी रैगिंग पुरानी कर्मचारी लेते हैं।
तो ऐसा हो जाता है। तो मैंने उसको एक दो ऐसी चीजें सिखाई और चमत्कार हुआ कि 3 दिन में सभी लोग उसका सम्मान करने लगे। जब वो ऑफिस का हॉल था बड़ा, उसमें प्रवेश करता था तो सभी अपनी सिगरेट फेंक देते थे, ये बात 3-4 दिन के बाद ही हो गई। तो हमारी अपनी फीलिंग्स से वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, न हमें ऐसी चीजें सुनकर देखकर निराश होना चाहिए, न निगेटिव होना चाहिए, न इस परेशानी में आना चाहिए कि क्या होगा, छोड़ सकते नहीं, माँ बाप को बता नहीं सकते, बॉस को कंप्लेंट नहीं कर सकते, नेचुरल है वो भी सोचेगा तो ना भाई ये कंप्लेंट्स तो बार बार, वो भी तो परेशान हो जाएगा कंप्लेंट, और कुछ कंप्लेंट है तो नहीं। लोगों की आम मेंटेलिटी होती है ऐसे हंसी मजाक कर देना, तो इसको लाइटली लेंगे और बहुत अच्छी फीलिंग्स क्रिएट करेंगे, तो इनके वाइब्रेशंस दूसरों के वाइब्रेशंस को बदल देंगे।
तो भ्राते जी, एक तो रिएक्ट ना करें, इसको थोड़ा सा हल्के में लें, और साथ ही जैसे कुछ आपने आध्यात्मिक अभ्यास बताए हैं उन आध्यात्मिक अभ्यासों को करें तो वाइब्रेशंस चेंज होंगे, निश्चित रूप से वो सभी पुनः ठीक हो जाएंगे। लेकिन भ्राते जी, एक चीज और होती है कि कई बार जो हदें हैं वो पार होने लगती हैं, समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं, या फिर कहते हैं कि जैसे पानी सिर के ऊपर जाने लगता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया?
हाँ, ऐसी स्थिति भी कईयों के पास आती है, मेरे पास भी ऐसे कैसी जाए हैं कि जहां दूसरा व्यक्ति बिल्कुल तंग करने लगता है, और कभी कभी इससे बड़ी बात होती है कि जो बॉस है वो भी उन्हें ही साथ देने लगता है, क्योंकि वो भी तो कलियुगी मनुष्य ही है ना, चाहे वो बड़ी पोस्ट पर है लेकिन वृत्तियां तो उसकी भी वही मानवीय कमजोरियां और सब उसमें समाया होता है। ऐसे में ऐसी बहनों को थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, और जैसे भगवान ने हमें सिखाया है, तुम नारी नहीं हो, तुम अबला नहीं हो, तुम शिव शक्ति हो। शिव शक्ति का अर्थ ये नहीं कि वो उन पे क्रोध करने लगे और बरसने लगे, पर कुछ कहे अवश्य दे। ऐसे में चुप रहना, ऐसे में मुस्कुरा के बात को हल्का करके छोड़ देना, ये कारगर सिद्ध नहीं होगा।
जैसे जैसे आपने पहले कहा कि मुस्कुरा दे, तो कई बार ऐसा होता है कि हमने मुस्कुराया तो सामने वाले को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि शायद इन्हें भी ये चीज पसंद आ रही है तो हम और करें।
ऐसे में उन्हें थोड़ा स्ट्रिक्टली और ये संकल्प करते हुए, मैं शिव शक्ति हूँ, आई एम मोस्ट पावरफुल, थोड़ा सा दो पावरफुल वचन भी बोल देने चाहिए, और ऐसा कई बहनें करती हैं और दूसरों के मुख को बंद कर देती हैं। तो ऐसे पावरफुल शब्द, जैसी परिस्थिति है उसी अनुसार अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हुए, अपने क्रोध को कंट्रोल रखते हुए अगर बोलेंगे तो निश्चित रूप से दूसरों को सावधान होना ही पड़ेगा।
जी जी जी, वो कहते हैं कि इतना मीठा भी ना बनो कि चींटी लग जाए। तो हम मीठे तो अवश्य बने, लेकिन इतने भी मीठे नहीं कि लोग चींटी, मतलब चींटियां हमारे पीछे लग जाए। तो हमें परिस्थितियों को भांपते हुए दोनों प्रकार से नम्र भी बने और साथ ही स्ट्रिक्ट भी रहे, तो ताकि इस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं बहनों के सामने वो दूर हो सके। ब्रता जी, ये हमारे पास अगला मेल आया है धार MP से, और ये बीके कल्याणी बहन है। वो लिखती है कि मुझे सुबह सुबह बहुत नींद आती है, लेकिन बाबा कहते हैं कि अमृत वेला रोज उठो और राजयोग का अभ्यास करो। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने नींद को कैसे जीतूं और अमृत वेला योग को कैसे पावरफुल बनाऊं।
देखिए, बहुतों के साथ ये समस्या आती है और इसका कारण दो विशेष रूप से होते हैं। रात को हैवी भोजन ले लेना और देर से सोना। कभी कभी एक तीसरी बात भी होती है कि सारा दिन बहुत अच्छा न बीता हो, तो सारे दिन की निगेटिविटी का इफेक्ट मन को थोड़ा अप्रसन्नता में ले जा रहा हो। अगर उसने देर से भोजन खाया है तो उसका पेट भारी होगा, शरीर भारी होगा, उसको नींद भी अच्छी नहीं आई होगी, और इस कारण जब वो सवेरे उठेगा तो पहले तो उठने का ही मन नहीं करेगा। वो सोचेगा क्या है, ये सबसे खराब बात है, थोड़ा और सो लूं, क्या है, अच्छा 5 मिनट में उठ जाता हूँ, लेकिन 5 मिनट के बाद तो 2 घंटे हो जाते हैं। एक तो ये चीज, नींद भी फ्रेश हो जानी चाहिए, इसलिए इनको कभी भी सोने वक्त TV आदि देखना या नेट खोलना, इन सब चीजों से बचना चाहिए। बिल्कुल ये याद रखना है कि जैसी मनोस्थिति में रात को सोया जाएगा उसका इफेक्ट हमारी नींद पर और हमारे सवेरे उठने पर बहुत गहरा होगा, क्योंकि राजयोग के अभ्यास में बात केवल उठने की तो नहीं है, उठकर हम क्या करते हैं, हमारा ब्रेन कितना फ्रेश है, कहीं वो डल तो नहीं है, कहीं उसमें एक विशेष तरह की लेजी फीलिंग तो नहीं भरी हुई है। तो कईयों के साथ ऐसा भी होता है, वो उठ तो जाते हैं लेकिन उठने के बाद उन्हें नींद नहीं आती बिल्कुल भी, लेकिन वो एंजॉय नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी चीज जो बहुतों के अनुभव में आ चुकी है, क्योंकि ये सजेशन मैं सबको देता हूं कि वो रोज 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य किया करें। इस प्राणायाम से ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है और धीरे धीरे हमारे ब्रेन में जो छोटे मोटे ब्लॉकेज हो जाते हैं खुलने लगते हैं और हम बहुत फ्रेश होंगे सवेरे। लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि रात को भोजन थोड़ा सा हल्का, और ऐसा भोजन जो पेट को और देह को भारी न करे, जो गैसेज एसिडिटी आदि पैदा न करे, ये करना चाहिए। इसके अलावा सवेरे अगर नींद फिर भी आती है, कईयों के साथ ऐसा भी होता है कि अकारण उनका मन फ्रेश नहीं रहता और वो जैसे ही राजयोग में बैठेंगे तो नींद आ सकती है, तो ऐसे में सुंदर विचारों की रचना करना या कुछ अच्छे साहित्य का अध्ययन कर लेना, जिसको हम कहते हैं अव्यक्त महावाक्य हैं, ईश्वरीय महावाक्य हैं, 5-7 मिनट भी पढ़ लिए जाएं तो ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और नए विचारों का सृजन करने लगता है। बिल्कुल ये मैंने अपने अनुभवों से भी देखा और जिनको सिखाया उन्होंने मुझे बताया कि सवेरे को सफल करने के लिए ये परम आवश्यक है कि हम अपने मन में खुशी देने वाले, उमंग देने वाले, हमारे महान कर्तव्यों की स्मृति दिलाने वाले संकल्पों को क्रिएट करें। इससे हम बिल्कुल जागृत हो जाएंगे और फिर हम वो अभ्यास कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं।
जी जी, मतलब रात को विशेष करके हम सोते समय ध्यान रखें कि हम थोड़ा सा जल्दी सोएं, भोजन हल्का लें और सुबह फिर भी नींद आ रही है तो कुछ अच्छे विचार करें। ब्रता जी, सुबह यदि स्नान करके योगा अभ्यास किया जाए तो वो कैसा?
हाँ, देखिए कईयों को ऐसा होता है सवेरे शौच जाने की आदत होती है, उन्हें तो स्नान कर ही लेना चाहिए, पर जिनको ऐसी आदत नहीं है, कोई 5 बजे जाएंगे, कोई 6 बजे फ्रेश होने जाएंगे, ऐसे में सिंपली ऐसे ही नहा लेने से 5 मिनट में स्नान कर लें और उसका भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि उससे भी ब्रेन काफी एक्टिव हो जाएगा और शरीर में और कहीं कहीं भी ब्लॉकेज जो हो जाते हैं वो भी खुल जाएंगे। उसमें भी थोड़े हल्के ठंडे पानी से बहुत गर्म नहीं, बहुत शीतल भी नहीं, लेकिन बीच के पानी से नहा लेने से हम बहुत फ्रेश अनुभव करेंगे।
जी दाता जी, बहुत सुंदर आज आपने जिन भी प्रश्नों का उत्तर दिया है, हमारे दर्शक अवश्य इन सब का अभ्यास करेंगे और अपने जीवन में श्रेष्ठता की ओर, सुंदरता की ओर बढ़ेंगे और अपनी इन समस्याओं से मुक्त होंगे, ऐसी हमें पूरी पूरी उम्मीद है। आपका बहुत 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 धन्यवाद। मित्रों, आज आपने देखा कि किस प्रकार से बहुत सुंदर धर्म और आध्यात्म की चर्चा से शुरुआत हुई थी। विशेष आवश्यकता इस बात की है कि हम आध्यात्म को अपने जीवन में शामिल करें, अपना सर्वांगीण रूप से विकास करें, मानसिक बौद्धिक रूप से, और आध्यात्म इसमें बहुत ज्यादा बल प्रदान करता है। कई बार समस्याएं ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं लेकिन फिर भी हमें बहुत बड़ी लगती हैं, और यदि हमने आध्यात्मिक रूप से अपना विकास किया हुआ है तो बिल्कुल छोटी प्रतीत होने लगती हैं और सहज रूप से हम उन्हें पार कर लेते हैं। आप भी अपनी समस्याओं को, यदि किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, हमें लिख भेजें, मेल कर सकते हैं आप हमें, ताकि आपकी समस्याओं को भी हम इस कार्यक्रम में शामिल करें। लक्ष्य हमारा यही है कि हमारा पूरा भारतवर्ष, हमारे सभी भाई बहनें सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हों। आज के समाधान कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।